हेलो फ्रेंड्स, मैं 36 साल की हूँ और मेरा नाम रूपा है। शादीशुदा हूँ और एक लड़की की माँ भी हूँ। सरकारी नौकरी करती हूँ और एक उच्च पद पर कार्यरत हूँ। मेरा पति अपना व्यापार करता है और उसको अपने काम के सिलसिले में आम तौर पर बाहर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में आपको बताती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है, कमर 28 इंच की है, मम्मी 38 इंच और चूतड़ 40 के हैं। मेरे जिम में सबसे आकर्षक मेरे मम्मी और गांड का उभार ही है। मैं एक बड़ी वाली चुतक्कड़ औरत हूँ। मुझे बिना अपने चूत में लंड लिए नींद नहीं आती। मेरे पति का लंड मस्त है और वो मेरी चूत को पूरा खुश करके रखता है, मगर जब भी वो बाहर जाता है ना, तो मैं अपनी बुआ के लड़के को बुलाकर उससे अपनी चूत की सेवा करवाती हूँ। वो मेरे घर के पास ही रहता है और पति होते हुए भी उसका घर पर आना जाना लगा रहता है, क्योंकि वो मेरी रियल बुआ का लड़का है। इसलिए किसी को भी मेरे और उसके साथ जुदाई के रिश्ते का पता नहीं है। सभी की नज़रों में तो वो मेरा भाई है और वो मुझसे राखी भी बंधवाता है। मेरी शादी लव मैरिज है, क्योंकि मेरा पति हमारी बिरादरी से नहीं। इसलिए मेरे माँ बाप ने शादी की ना कर दी थी। जब उनको पता लगा कि मैं इस लड़की से शादी करने वाली हूँ, तो उन्होंने साफ कह दिया, जाओ तुम्हें जो करने करो, मगर हमारे लिए हमारी बेटी आज से मर गई। मेरे पति के परिवार वालों की भी कुछ इसी तरह की जिद थी, मगर उन्होंने लड़के के आगे अपनी हार मानकर हाँ कर दी। मैं अब किसी की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। मेरे पति का नाम अशोक है और मैं उससे मुलाकात ऑफिस में किसी काम के सिलसिले में हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक सरकारी ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर हूँ, तो मुझसे मेरे ऑफिस में अपने किसी काम के चलते मुझसे मिला था। उसका काम कुछ ऐसा था कि उसके ऑफिस का निरीक्षण करना ज़रूरी था, तो उसने कहा था, मैम आप अब जब चाहे निरीक्षण कर लें। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कल ही आती हूँ। अगले दिन मैं नियत समय पर पहुंच गई और निरीक्षण के बाद जब वापस आने लगी, तो उसने मुझे एक ऑफिस की डायरी उपहार स्वरूप दी। मैंने उस डायरी को अपने पर्स में रखा और रखकर भूल गई। जब घर आकर पर्स खोला तो डायरी नजर आई। जैसे ही खोला, उसमें एक लिफाफा निकला जिसमें 10,000 रुपये थे। मैंने सोचा कि इस टाइम कुछ कहना ठीक नहीं है, समय पर बात करूंगी। 2 दिन बाद अशोक ऑफिस आया और मुझसे बोला। मैंने उससे कहा, तुम्हारा काम हो चुका, तुम्हें स्वीकृति पत्र 1-2 दिन में मिल जाएगा। उसने कहा, यदि आप शाम तक आप लेटर दिलवा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैंने कहा ठीक है, शाम को आ जाना। शाम को तो वो आया और मैंने उसको उसका लेटर बाहर जाकर क्लर्क से लाने के लिए बोला। लेटर लाने के बाद वो वापस मेरे रूम में आया। उस समय मैं अपने घर वापस की तैयारी में थी। मैंने चपरासी से बोला कि वो ऑटो रिक्शा लेकर आए। अशोक को आते देख कर मैंने चपरासी को इशारा किया कि अभी रुक जाओ। फिर अशोक ने पूछा, बोलिए अब क्या बात है। मैंने उसे झिझकते हुए कहा, देखिए आप मेरी बात का कोई उल्टा मतलब ना निकालिएगा, क्योंकि किसी लेडी ऑफिसर के साथ बहुत सोचकर बोलना पड़ता है। मैंने कहा, बोलो, अगर मुझे गुस्सा भी आया तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो उसने कहा कि ठीक है मैम, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको घर छोड़ दूंगा और यकीन मानिए आपको घर पहुँचने में कोई देर नहीं होगी। मैंने बिना कुछ कहे चपरासी से कहा, ऑफिस का रूम बंद कर दो, मैं खुद ही ऑटो ले लूँगी। और मैं उसके साथ ऑफिस से बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई ना, तब मेरा ध्यान उसके शरीर पर गया। 6 फुट लंबा गठीला शरीर मुझे तो बहुत आकर्षक लगा। बाहर निकलकर बोला, प्लीज मैम आप मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपकी कार पार्किंग से लेकर आता हूँ। अब मैं उसको किसी और नज़र से देख रही थी और उसको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती थी। मुझे ये भी पता था कि अब इससे काम के सिलसिले में आगे कोई और मुलाकात नहीं होगी। अभी मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोच पाती, अशोक ने मेरे पास आकर कार का हॉर्न बजा दिया। मैं कार में बैठ गई। दोस्तों, आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। तो वो बोला, मैम अगर आपकी जगह कोई पुरुष अधिकारी होता ना, तो मेरा काम इतना जल्दी नहीं होता, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते, और शायद ही हमारी आखिरी मुलाकात होती है, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी लें। मैंने कोई आंसर नहीं दिया और मुस्कुराकर अपनी हामी दे दी। कॉफ़ी पीने के बाद उसने एक लिफाफा निकाल कर मेरी तरफ रखा और बोला, देखिए इनकार मत कीजिएगा। मैंने उस लिफाफे पर अपने से पर्स से उसी का पुराना लिफाफा निकाल कर रखते कहा, ये आपके अमानत है और आपके काम आनी चाहिए, इसलिए इन्हें अपने पास रखिए। ज़िंदगी पता नहीं कितनी लंबी है, फिर न जाने कब और कहाँ मुलाकात होगी। वो मेरी तरफ देखता ही रह गया और दोनों लिफाफों को अपने पास रखते हुए बोला, मैडम मैं अपने जीवन में कुछ भी भूल जाऊँ, मगर आपको नहीं भूलूंगा। बहुत खुशनसीब होगा जिससे आपकी शादी होगी। मैंने कहा, पता नहीं आने वाले कल में क्या लिखा है। वो मुझे घर तक छोड़ गया और बोला, मैं आपके घर नहीं आऊँगा, वरना कोई कुछ भी कहेगा। मैं बिना जवाब दिए उसको बाय करके अपने घर आ गई। कुछ दिन बाद उसका फ़ोन आया, मैडम जिस काम की परमिशन ली थी वो तो पूरा हो गया, मुझे उसकी शुरुआत आपसे करवानी है, इसलिए आप अपनी रजामंदी दे दो और जो भी समय आपके लिए उचित हो जाए। मैंने कहा, कोई भी समय, जिस दिन ऑफिस की छुट्टी हो मुझे सूट करेगा। उसने कहा तो ठीक है, कल शनिवार है, आपकी भी छुट्टी होगी, दोपहर 12 बजे का टाइम ठीक है? मैंने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा मैडम बुरा ना माने, मैं 11:30 बजे घर आपके कार भेज दूंगा, तो आपको कोई आने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है। घर आकर मैं सोच रही थी कि अब कौन सी ड्रेस डाल के जाऊँ जिससे मैं आकर्षित लगूँ। बहुत सोच विचार कर मैंने एक लो कट ब्लाउज और एक ऐसी ब्रा पहनी जो मेरे मम्मों के निपलों को मुश्किल से ढक पाए, नीचे से पूरी तरह से मम्मों को उठाकर कसे रहे ताकि मेरे दूध उठे रहें, अगर कोई ज़रा भी नज़र मेरे मम्मी पर डाले तो उसकी आंखों में मेरा दूध अपना जलवा दिखा दे। मेरा सारा ध्यान इसी में था कि अगर मैं उसके साथ आग साड़ी का पल्लू ठीक करने के बहाने एक पल के लिए झुकूंगी ना तो मेरे मम्मों के बुरे मज़े ले सकता है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ 4-5 लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, तो उसने मेरा स्वागत किया और मुझसे एक रिबन कटवाया। मैंने रिबन काट कर उसके इस नए काम की शुरुआत कर दी। अशोक ने मेरा थैंक्स करते हुए कहा आप नहीं जानती मैम कि आपने मेरी प्रार्थना को मानकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, आइए कुछ नाश्ता पानी हो जाए। कुछ समय बाद उसको छोड़कर बाकी के लोग विदा मांगते हुए चले गए। अब वहाँ बस हम दोनों ही रह गए। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू इस तरह से गिराया जैसे वो अपने आप ही हो गया। मैं कुछ झुककर पल्लू उठाने लगी जिससे उसकी आंखें मेरे मम्मों पर टिक गई और वो देखता रह गया। मैंने जल्दी से पल्लू ठीक किया और फिर से बैठ गई। मम्मों की झलक का असर उसकी पैंट के अंदर होना शुरू हो गया, उसका लंड उठने लगा, उछल उछल कर बाहर आने को होने लगा और मैं ये सब देखकर भी अनजान बनी रही क्योंकि मेरा मकसद तो पूरा हो चुका था। कुछ देर बाद उसने कहा मैडम, मैंने कहा मेरा नाम रूपा है मैडम ने, आप मुझे रूपा कह के बुलाइए। तो कहा ओके मैडम, मैंने कहा फिर मैडम, कहता ओके रूपा जी, मगर नहीं रूपा जी नहीं सिर्फ रूपा। तो कहता ठीक है आप बुरा ना मानिए, अब मुझसे रूपा नहीं रूपा जी बोला जाएगा। मैंने कहा ठीक है यार, धीरे धीरे खुद को एडजस्ट कर ही लेगा। तो कहता रूपा जी आज आप लंच कहाँ करेंगी? मैंने कहा अशोक जी लंच देने वाले पे होता है, वो कहाँ लेकर जाएगा? तो बोला ठीक है। उसने किसी होटल में फैमिली केबिन बुक किया और मुझे वहाँ ले आया। इस बीच मैंने 3-4 बार साड़ी का पल्लू गिराया और उसे अपने दूधिया मम्मों के दर्शन करवाए ताकि उसके लंड का खून गर्म रहे और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करे। मैं पूरी तरह से देख रही थी कि उसका लंड बाहर आने की कोशिश कर रहा था। खैर अब वो कुछ कर नहीं सकता था। लगभग 2 बजे हम दोनों होटल पहुँचे और केबिन में बैठ गए। वहाँ बैठते मैंने अपनी साड़ी का पल्लू इस तरह से किया कि मम्मों का दरबार अब पूरी तरह से खुला होकर उसको गर्म करता रहे। मेरे मम्मी शायद उससे कह रहे थे कि आशा अगर तुझमें दम है तो आ और भंबोड़ ले हमें। अब उसका ध्यान मम्मों पर ज़्यादा और किसी बात पर कम था। कुछ देर बाद बोला, मैंने कहा क्या देख रहे हो? शर्मा कर बोला कुछ नहीं मैडम। मैंने कहा फिर मैडम? तो कहता सॉरी। अब आप ये कहानी अंतरवासना.com पर सुन रहे हैं। मैंने उसको कुछ लिफ्ट देते हुए कहा देखो जो तुम देख रहे हो वो अगर किसी मैडम के हैं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अगर रूपा के देख रहे हो तो कोशिश करो, शायद अच्छी तरह से देखने की सफलता मिल जाए। ये सुनते उसने मेरी आंखों में झांका और मेरे हाथों को पकड़ कर कहा सच बोल रही हो रूपा? मैंने कहा अब सिर्फ रूपा जी कहाँ गया, जिसे अपना समझा जाता है वहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, समझे मिस्टर अशोक? मैं उसे पूरी लिफ्ट दे रही थी, अब जो भी करना था उसको करना था, वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। झट से उठा, मुझे अपने आगोश में लेकर चुंबन करने लगा, एक हाथ से मेरे मम्मी दबाने लगा। मैंने भी झट से उसके पैंट की जेब खोलकर उसके लंड को आज़ाद कर दिया और मुट्ठी में दबा लिया। हम दोनों अब अपनी वासना को रूप देने लगे। कुछ देर बाद लंच आ गया तो हम दोनों ने खुद को ठीक किया और खाना खाकर बाहर निकल आए। अभी तक ना उसने मेरे मम्मों को पूरी तरह से देखा तो था, ना ही मैंने उसके लंड को देखा था। हालांकि हम दोनों ने अच्छे से एक दूसरे के आइटम का निरीक्षण तो कर लिया था। बाहर आकर अशोक बोला रूपा अभी मेरा तुमको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ देर मेरे साथ और रहो। मैंने कहा सब मैंने कब कुछ कहा है, बोलो कहाँ चलना है। वो मुझे अपने ऑफिस ले आया और वहाँ हमारे सिवा कोई नहीं था, पूरी आज़ादी थी। वहाँ पहुँचकर उसने फिर से मुझे चूमना शुरू कर दिया। फिर मैं भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने एक चुंबन के जवाब में 2 चुंबन देने लगी। फिर उसने मेरा ब्लाउज और ब्रा उतार कर मेरे मम्मों की पूरी तरह से निरीक्षण किया, हाथों में लेकर दबा कर देखा और मुँह से निप्पल को चूसा। मैंने भी उसके लंड को पूरा आज़ाद कर दिया। अशोक के लंड को देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लंड कहना तो उसकी बेइज्जती थी, पूरा 8 इंच लंबा और बीच में बहुत मोटा था, ऊपर और नीचे से कुछ कम मोटा था। मैंने अपनी मुट्ठी में लेकर उसे जैसे ही खींच कर नीचे गया तो मुझे लगा कि वो कुछ और लंबा हो गया। मैंने हाथों से उसकी खूब मालिश की मगर वो झुकने को तैयार नहीं था। मैं जितनी लंड की मालिश करती वो उतना फुफकारे मारता। आखिर जब मैं थक गई तो मैंने कहा अब ये मेरे बस में नहीं है, तो बोला अब तो बस ये तुम्हारे भरोसे, चाहे तो उसे ऐसे तड़पता छोड़ दो या प्यार से पेश आओ, देखना प्यार पाते तुम्हारे कदमों में गिर जाएगा, उसे इसकी रानी से मिलवा दो, फिर देखो कैसे अपने घुटने टेकता है। जब मैंने रानी से मतलब अपनी चूत से मिलवाने को मना किया ना तो लगभग रोते हुए बोला क्यों इस पर जुल्म कर रही हो रूपा? मैंने कहा मेरी रानी अपने राजा से तभी मिलेगी जब राजा का मलिक मुझसे शादी कर लेगा। तो उसने कहा, मैं वादा करता हूँ शादी तो तुम ही से करूँगा। इस तरह से उसने मुझे फुसलाकर अपने लड मेरी चोट से मिलवा दिया। अशोक का लड बहुत मोटा लंबा था, इधर मेरी जूत तो अभी सिर्फ एक बार जूती थी और उसे भी काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए कसी हुई जूत ने मोटे लंड का रास्ता रोक लिया। अगली बार आपको इस सेक्स कहानी में अपने आगे वाली मुनिया की जुदाई का मजा दूंगी।